Radhashtami, 10th canto, 30 chapter, 28 slok, June 3rd, September 2012.
सबसे पूज्य सीधा रासलीला का वर्णन करते हैं, पर अगर आप राधा कृष्ण का प्रेम समझना चाहो तो भक्त के माध्यम से ही आप उसे समझ सकते हो। व्यास देव जी ने गोपियों का वर्णन किया है भगवत महालीला द्वारा ये स्थापित होता है कि परम भगवान कौन है। उसके पश्चात फिर आगे जाकर गोपियों का लीलाओं का वर्णन किया जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति ये पढ़ेगा तो उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि परम भगवान कौन है। आगे
राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक ओर छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका हैं। यह श्लोक तो गीत गोविंद से उद्धृत है। इसमें जयदेव गोस्वामी ने कृष्ण द्वारा रास लीला छोड़कर श्रीमती राधा रानी की खोज में जाने का वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म भगवान नाम कीर्तन तथा शुद्ध इस प्रेम का प्रचार किया।
तो इन श्लोकों के द्वारा ये स्पष्ट हुआ है कि भगवान के अनेक भक्तों में जो गोपियां हैं वो सबसे प्रसिद्ध हैं, और गोपियों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? श्रीमती राधा। और प्रभु भगवान भी कई बार समझ नहीं पाए राधा रानी का कितना गहरा स्नेह है मेरे, और फिर परम भगवान प्रकट हुए किस रूप में? केतुनी महाप्रभु के रूप में। और उन्होंने केतुनी महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर हमें ये महामंत्र का उपदेश दिया। ये महामंत्र के माध्यम से अपन भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। केतुनी महाप्रभु को सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माना जाता है, और केतुनी महाप्रभु प्रकट होने के लिए परितों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने यह हरि नाम का विचरण किया। ये खजाने में छुपा हुआ खजाना था, चैतन्य महाप्रभु के साथ ने एक खजाने को खोला और खुले रूप से बांटा सबको। और चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, प्रीति मिले आज चंद्रनगर के गाँव विश्व में जितने नगर गाँव है हर जगह यह हरि नाम पहुँचेगा। और जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो तो हरे के द्वारा आप क्या कर रहे हो? राधा रानी जी की कृपा की प्रार्थना कर रहे हो। कई बार कई मंत्र में लोग देव जय राधे जय राधे जय राधे का कीर्तन करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है अगर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो, क्योंकि हरे कृष्ण के कीर्तन में राधा रानी जी का नाम। तो राधा रानी है भगवान की भक्त जो प्रकट हुई थी भगवान के प्रकट होने के 15 दिन बाद। एक समय नारद मुनि भगवान के धाम गए लोक धाम, जो लोक धाम में गए उन्हें लगा कुछ कमी है या भगवान नहीं, उन्हें पता लगा कि भगवान पृथ्वी पर प्रकट हो गए हैं, जो उनका जो स्थान था वो खाली खाली दिखता है। जैसे कभी आप किसी के घर में जाओ और सेठ नहीं है घर में तो आप अंदर जाओ तो खाली खाली दिखता है ना। फिर रामनाथ मुनि लोग धाम में गए उन्हें लगा कुछ खाली खाली दिखा, फिर उन्हें पता लगा जब उन्होंने पूछा भगवान कहाँ है, भगवान तो बहुत ही जगह में प्रकट हो गए हैं अपनी लीला प्रकट करने के। नारद मुनि ने कहा भगवान प्रकट हुए हैं तो मुझे भी यहाँ आना चाहिए। नारद मुनि भी आए बहुत ही जगह, नारद मुनि आए और नंद महाराज के घर में गए, नंद महाराज और यशोदा माई के घर में गए और वहाँ उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जब उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया तो ये भी पता था कि राधा रानी की प्रकट होगी होगी कहा, क्योंकि राधा रानी है भगवान की अंदर में शक्ति या आनंदमयी शक्ति, आनंदमयी शक्ति। राधा रानी का एक ही उद्देश्य है भगवान की खुशी, भगवान की प्रसन्नता, और कोई भाव नहीं रहता उनके मन में। तो नारद मुनि ने जब भगवान का दर्शन प्राप्त किया इस भौतिक जगत में आया तो उन्हें पता था कि राधा रानी जी जो कि उनकी समाधान साथी है जो कि उनको अत्यंत सुख देती है, आनंद देती है, वो भी प्रकट हो गई होगी किधर न किधर। तो नारद मुनि हर घर में गए ब्रज में ये देखने के लिए, पिछले कर्नाटक में कौन प्रकट हुआ है, हर घर में जाकर उन्होंने देखा, उन्होंने नया बच्चा पैदा हुआ देखा, उन्होंने देखना चाहते थे कि दादा रानी प्रकट हुई है कि नहीं। और घर घर जाते जाते
कई बार लोग संतों को घर बुलाते हैं इसी भावना के साथ,
घर आएंगे आशीर्वाद देंगे धंधा फिर जाएगा। विश्वानु महाराज ने सोचा कि शहर नाम मुनि की कृपा से मेरी बेटी की आंखें खुल जाए, तो नारद मुनि उन्हें उठाकर विश्वानु को बेटी को उठाकर लाए नारद मुनि के सामने, छोड़कर चले गए कमरे से। नारद मुनि को पता था ये लड़की कौन है, नाती क्यों है। नारद मुनि ने इस लड़की को प्रणाम किया, जो प्रणाम किया तो इस लड़की ने अपना किशोरी का रूप प्रस्तुत किया। राधा रानी भगवान से 15 दिन की छुट्टी है, और किशोरी कहते हैं जब बच्चे की 14 साल की उम्र हो जाती है, 14-15 साल। तो राधा कितनी नाथ ये लड़की ने अपने किशोरी का रूप प्रस्तुत किया। नारदी ने प्रणाम किया, नारदी में इतना आनंद आया वो रूप देखकर कि वो कुछ बोल भी नहीं सके, और फिर अपना किशोरी का रूप प्रस्तुत करने के पश्चात लड़की ने फिर सपने साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। और जब साधारण बच्चे का रूप ग्रहण किया तो नारद मुनि बेटी को क्या कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि नारद मुनि ने देख लिया कि राधा रानी प्रकट हो चुकी हैं और ये ऋषभ के घर में है अन्नी लड़की के रूप में। तो नारद मुनि को प्रणाम कर रहे थे, और जब प्रणाम कर रहे थे तो महाराज ऋषभानु अंदर आ गए। महाराज ऋषभानु ने कहा मेरी अंधी बेटी को नारद मुनि प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि थोड़े मिनटों के लिए उस अंधी लड़की ने किशोरी का रूप प्रकट किया और फिर वापस साधारण अंधे बेटी का रूप धारण कर रहे। तो यशोदा माई और नंद महाराज ऋषभानु महाराज रमानाथ और कीर्तिदास के बड़े अच्छे मित्र थे, इन दोनों में काफी आना जाना था। तो एक दिन नंद महाराज और यशोदा माता महाराज ऋषभानु के घर में आई, और जब उनके घर में आई तो महाराज ने उनका स्वागत किया और कीर्तिदास ने कहा भाई बेटी हुई है बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत के आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, पर एक दुख है वो गंदी है, ठहरी है और भूखी है। तो ये था ऋषभानु और कीर्तिदास में दुख। तो यशोदा माता जब आई अपने बेटे को लेकर, बेटे को लेकर आई, तो यशोदा माता ने कीर्तिदास को उठाया, मैं ये राधा रानी को उठाया, और उठाने के लिए उनको अपने बेटे को नीचे रखना पड़ा, क्योंकि पहले बेटे को उठा रहे थे, तो बेटे को नीचे बिस्तर में रख दिया और इस लड़की को उठाया राधा रानी। जब लड़की को उठाया तो भगवान रोने लगे, मुझे नीचे गिरा दे, मुझे नीचे रख दिया, भगवान रोने लगे। तो फिर माता ने दोनों को उठा लिया, जैसे कई बार देखते हो बाएं हाथ में राधा रानी थी, दाहिने हाथ में कृष्ण। जब दोनों को उठाया तो भगवान ने राधा रानी को छुआ, निर्दोष बच्चे थे। जैसे ही राधा रानी को छुआ राधा रानी ने ध्यान से खोल दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि पहला व्यक्ति जिसको देखे पृथ्वी पर कौन हो। एक और कहा इस विषय में, एक और कथा ये इस प्रकार की है कि एक समय जब भगवान यशोदा माता कृष्ण भगवान को लेकर वृषभानों के घर में आई तो भगवान खुद ही प्रलय निकल गए एक कमरे से और दूसरे कमरे में राधा रानी बैठी हुई थी, अंधी थी उस समय, उसको छुआ और जैसे उसे छुआ राधा रानी ने अपने आके इस विषय में ये भी कहा जाता है कि जब भगवान प्रकट होने लगे थे इस पृथ्वी पर तो उन्होंने राधा रानी को भी ये कहा था कि तुम्हें भी प्रकट होना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा मैं प्रकट नहीं होना चाहती क्योंकि मुझे अनेक भौतिक व्यक्तियों का दर्शन लेना पड़ेगा। तो भगवान ने उन्हें ये वादा दिया था कि पहला व्यक्ति जो तुम देखोगे और मेरे अलावा तुम किसी को भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आचार्य ने कहा है कि राधा रानी अंधी थी क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अब प्यारा व्यक्ति जो वो देखे पृथ्वी पर कौन होगा। तो इस प्रकार भगवान राधा रानी से पले तो राधा रानी है भगवान की सबसे ऊंचे कोटि की भक्त और हम और जब साथ में देखी थी हम छः चार महीने के काम करने पर बच्चे को ये छूट दी जाती है चुने अन्नप्रसन्न आश्रम में राधा रानी ने भगवान कृष्ण के प्लेट से अन्न लेकर अपने मुंह में जब राधा रानी और उनकी साथी जब वो खेलती भी थी जब वो छोटी थी तो क्या खेलते थे वो खेलते थे भगवान की मूर्ति बना कृष्ण भगवान की मूर्ति को बना कर रखते थे उसको हार चढ़ा देते कृष्ण भगवान पर ध्यान करते हुए वो अपनी खेलती थी। तो इस प्रकार शुरू से ही राधा रानी के घर मन में एक इच्छा था क्या कृष्ण की सेवा। तो वेदन को क्या राधा रानी जी का इतना गहरा संबंध है कि वेदों में भी बहुत कम स्थानों में उनका वर्णन है। तो राधा रानी के साथ 8% गोपियाँ हैं। गोपियाँ कौन है गोपियों ने कहते हैं जो राधा रानी का सहयोग दे रही है कृष्ण की सेवा में और इनकी अच्छे सखियों के नाम क्या है ललिता विशाखा और चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंगदेवी कुंगमप्रिया सुदेवी मायापुरी मंदिर में इन सब अच्छे सखियों की मूर्तियाँ हैं और इस्कॉन के तिरुपति के मंदिर में। तो ये हैं अस्त्र सखी और ये जो अस्त्र सखी थी इनका सदा भाव क्या था भगवान राधा रानी जी का सहयोग देना कृष्ण भगवान की सेवा में। तो शुरू से ही राधा रानी के मन में एक ही भाव था क्या है कृष्ण की सेवा। तो इस प्रकार राधा रानी के मन में एक ही भाव था राधा रानी हमेशा एक लॉकेट पहनती है उस लॉकेट में क्या है कृष्णा की तस्वीर है। तो राधा रानी की अनेक लीलाएं हैं तो पहले हमें सिद्धांत समझना चाहिए वो सिद्धांत क्या है राधा रानी का क्या है असली पोजिशन वो है क्या भगवान के पास। मानसी गंगा जो है प्राचीन समय में बहुत बड़ी होती है तो एक समय राधा रानी और गोपियों ने एक नाव में बैठी और नाव में बैठी और नाव वाले बोला हमें गंगा के पार ले जाओ मथुरा में जाकर हमने हमारा दूध बेचना है मक्खन बेचना है। नाव में बैठ गए सौदा कर दिया इतना पैसा है दिया जाएगा। नाव वाले ने नाव चलाई और थोड़े आने आगे जाने पर कहा अपने नाव के पुरानी नाव है आगे नहीं चलेगी भूख लग रही है कुछ खाने को दो। तो गोपियों के पास कोई पानी नहीं था फिर थोड़ी देर आगे वो चले, फिर नाव वाले ने रोक दिया। पहले पुरानी नाव है, पानी अंदर आ रहा है, बहुत ज्यादा बोझ है नाव में। तो जो मक्खन दूर ने जा रहे थे बेचने के लिए, सब उन्होंने गंगा में फेंक दिया नाव को हल्का करने के लिए। तो नाव थोड़ी देर आगे फिर वो चले, फिर नाव वाले फिर नाव रोक, अभी भी बहुत ज्यादा बोझा है, बोझा हल्का करो। तो जो गहने वो भी उन्हें पहनी हुई थी, वो भी उन्हें गंगा में फेंक दिए नाव को हल्का करने। फिर नाव वाला कहने लगा, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं थक गया। गोपियों ने कहा, तो नहीं जाओगे तो हम तुम्हें उठाकर दरिया में फेंक देंगे। गोपियों के कहने पर आगे बढ़ा। जैसे वो आगे बढ़े तो एक तूफान आने लगा, बड़ा भारी तूफान आ रहा था। तो डरा नहीं था, भागे और बचने के लिए वो नाव नाव चलाने वाला क्या करे, नाव चलाने वाला उसको उन्होंने पीछे से पकड़ लिया। जब पकड़ा तो उन्हें क्या पता लगा, ये तो कृष्ण भगवान है, नाव कौन है के साथ थे। और एकदम उन लोग अप्रकट हो गए, एकदम अप्रकट हो गए। तो गोपियां भगवान को खोज रही थी अलग अलग स्थानों में। फिर वो उन्हें पता लगा कि भगवान ने इस कुछ में छुपे हुए हैं। तो जब गोपियों वहां पहुंची तो भगवान ने तुरंत ही अपना नारायण का रूप प्रकट कर दिया। क्या बता दो, जब गोपियां मतलब नहीं, उन्होंने देखा ये तो नारायण है, कृष्णा नहीं है। तो उनको प्रणाम किया, हो गया। फिर वहां आगे बाद में राधा रानी जी, और जब राधा रानी जी आई तो राधा रानी ने राधा रानी के शरीर से इतनी गहरी खुशबू निकलती है। तो जब भगवान ने खुशबू सुनी तो तुरंत ही अपना चार हाथों का रूप प्रकट कर दिया, प्रशांत सुंदर रूप धारण कर दिया। विभिन्न समय में राधा रानी की खूबसूरती में इतना आकर्षण है, उनके शरीर से इतनी खुशबू निकलती है। तो भगवान भी अपने आप को उनसे दूर नहीं रख सकते। राधा रानी जी के लड़का रानी जैसे आप जानते हो सोने के समान है, सोने के भांति। और राधा रानी जी जब भगवान के साथ ही खड़ी होती हैं तो भगवान के शरीर में भी सोने का रंग आ जाता है। राधा रानी किसी स्थान में जब खड़ी होती हैं उस स्थान में जो पेड़ हैं, पत्थर हैं, फूल हैं, सबका रंग बदल जाता है। सबका रंग क्या हो जाता है, गोल। सबका रंग सोने का हो जाता है। तो जब राधा रानी वहां पहुंची भगवान अपना को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्होंने विष्णु का रूप प्रकट किया और श्याम सुंदर का रूप धारण कर लिया। तो एक समय भगवान को सिर दर्द हो रहा था और भगवान इस समय द्वारका में है और नाथ मुनि भगवान को मिलने आए द्वारका में। नारदमुनि भगवान को मिलने आए द्वारका में और नारदमुनि को भगवान ने कहा, मुझे बहुत भारी सिरदर्द है, ये सिरदर्द दूर होगी अगर मुझे मैंने भक्त चरणों की धूल में है, और भक्त चरणों की धूल मिलेगी तभी सिरदर्द दूर होगी। भगवान ने इस समय द्वारका में तो नामी पहले गए भगवान की पत्नियों के पास, सत्य भामा रुक्मिणी के पास, ताकि भगवान को सिरदर्द हो रही है, उनकी जान खतरे में है, और अगर उनके बच्चे धूल उनके भक्तों के चरणों की, तो सबने इनकार कर दिया। सत्य बाबा रुक्मिणी सबने इनकार कर दिया, सबने कहा हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे पर, हमें नरक में जाना। फिर वो योग के पास गए, ज्ञानी के पास गए, सबने इनकार कर दिया। फिर नारद मुनि लौटे द्वारका, और जब द्वारका लौटे तो भगवान को उन्होंने रिपोर्ट दी, मैं सब जगह हो आया पर कहां भी मुझे कोई नहीं मिला। या फिर चंडो की भूल दे देगा, फिर चंडो की भूल देखो साधारण काम के होते हैं, कोई बड़े प्यारी नहीं है, कुछ नहीं है, उनका कि भक्ति भाव कितना गहरा है। जैसे उन्हें पता लगा भगवान की सुविधा हो गई, तुरंत ही तैयार हुए अपने चरणों की धूल देने के। तो नान मुनि धूल उठाकर द्वारका पहुंचे तो भगवान गुरु ने कहा, आपने ठीक कहा था, सब भक्त इनकार कर दी धूल देने से, पर आपके जब मैं ब्रज में पहुंचा, ये गोपियां आपका गुणगान कर रही थी, बैठे थे द्वारका की ओर नेत्र रखकर और आपकी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें कहा कि आपके सिर दर्द धूल हो जाएगी क्योंकि चरणों की धूल तो छूगा, खुशी से उन्होंने धूल दे दी, बिल्कुल नहीं हिचके, बाकी तो सब हिचक रहे थे। तो भगवान ने नाम नहीं होगा, देखा तुमने क्या सेवा बढ़ा रहे हो, तुमने भी अपने चरणों की धूल मुझे नहीं दी, तो मैंने अपने चरणों भक्त के चरणों की धूल मांगी, तुमने भी नहीं दिया, और गोपियों ने और अंतरारी ने एकदम धूल दे दी। तो इसे आप देख सकते हो कि राधारानी जो गोपियां हैं उनका बड़ा भारी हार। एक समय भगवान ब्रज में थे, ब्राह्मण अपनी रासलीला करते थे इन गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ। कंस ने कई असुरों को भेजा था भगवान का वध करने के लिए, पर वो असफल रहे हर कार्य। तो एक कंस से भेजा था एक राक्षस असुर अरिष्ट असुर को, ये आया था एक भैंस बैल के रूप में आया था वो, और सब ब्रिजवासी को मार रहा था, सब बच्चों के ऊपर चढ़ के जा रहा था, सारे ब्रिजवासी अपनी खुशी से सब कह रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, ये जिसको सूरत हमारा जीना उसने असंभव कर दिया। तो भगवान ने बड़ी सरलता के साथ ऐसे सुर का तो जब वध किया राधा ने गोपियों का, अरे कृष्णा ने एक बहन बोली बहन का वध कर दिया, अभी तो बड़ा पापी हो गया, गाय और बहन का वध करना तो बहुत बड़ा अत्याचार है, पर अगर राजा पाप करे तो प्रजा को भी उसका असर पहुंचता है। अब तो हम कृष्णा के साथ बिल्कुल ही बैठे गए। तो राधा रानी ने गोपियों ने कहा, आज हम रासलीला करने नहीं आएंगे, तुमने बैल को मारा है, तुम्हारा शरीर पापों से भर गया है। भगवान ने कहा, अरे भाई वो बैल थोड़ी था, वो था सूर था, बैल के रूप में आया था, और उस बैल ने सब निर्दोष बच्चों को मारा, सबका जीवन दुखी कर दिया था, मैंने तो ब्रिजवासियों की सुरक्षा की उसका पाप करके। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, आखिर वो बैल था, पाप तो होगा। तो भगवान ने कहा, अच्छा मुझे क्या इसके लिए क्या पछतावा करना है, हाँ क्या है अटोनमेंट। तो उन्होंने कहा, आप जाओ यात्रा करने सारे तीर्थ के स्थानों पर, भारत में जितने तीर्थ के स्थान हैं सब जगह जाओ, सब जगह यात्रा करके हमें बहुत अच्छा है, सब जगह यात्रा करके आओ, फिर हम तुम्हारे साथ बैठ के रासलीला करेंगे। फिर भगवान ने अपनी विनम्रता को छोड़ दिया, भगवान ने कहा, मैं क्यों जाऊँ सब जगह यात्रा करने के लिए, मैं सारे तीर्थों को यहाँ बुला लूंगा, मैं क्यों जाऊँ पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा करने के। तो कैसे बुलाओगे सारे तीर्थ यहाँ आएंगे, कैसे संभव है। भगवान ने अपने लेफ्ट हील के साथ एक बड़ा छेक पैदा कर दिया पृथ्वी पर, और वो छेक से अलग अलग तीर्थ के स्थानों की नदियों का जल आने लगा। तो राधा रानी ने कहा, हम कैसे विश्वास करें जल जो है सादा जल नहीं है, अलग अलग तीर्थ के स्थानों पर जल है, हम कैसे विश्वास करें। भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं सारे तीर्थ के स्थानों यहां बुला दूंगा तुम्हारे सामने। तो सारे तीर्थ के स्थान के जो देवता थे अलग अलग स्थानों के, सब आ गए दर्शन करके, गंगा जमुना सारे देवता है। तो कहा हम खुशी के से हमारे नदी का जल देंगे भगवान की, भगवान की खुशी के लिए। तो राधा ने देखा ये तो भगवान ने सचमुच श्याम कुंड बना दिया, बड़ा कुंड बना दिया जिसका नाम था श्याम कुंड। भगवान ने कहा इस इन सब कुंडों के जल से मैं स्नान करूंगा और जो पाप का परिणाम है उसे मुक्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार उन्होंने स्नान कर लिया। और फिर राधा भगवान ने तुम भी स्नान करो, तुमने क्या किया है, बाकी मैंने अगर पाप किया है तुम गोपियों और राधा रानी को भी पाप का असर आएगा, लेकिन राजा करेगा कहाँ पर प्रजापति असर आएगा। राधा रानी गोपियों ने कहा नहीं हम शाम को स्नान नहीं करेंगे, वो उसमें आपने स्नान किया है आपका शरीर पाप से भरा हुआ है, हम शाम को स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो एक फुटप्रिंट था का, यहाँ पानी था थोड़ा। तो राधा रानी ने कहा ठीक है हम अपनी चूड़ियां सब तोड़ कर खोलेंगे, और हम सब लाखों गोपियां हैं सब मिलकर जल लाएंगे और नदी कुंड बनाएंगे। मैंने कहा तुम अपनी चूड़ियों को तोड़कर छेक बनाओगे उसे पानी आएगा, इस तरह बहुत समय लग रहा है। मैं इन तीर्थ के स्थान को ये आदेश देता हूँ कि वो अपना जल दें तुम्हारा कुंड बनाने के लिए, और फिर ये कुंड बना जिसका नाम है। और भगवान ने कहा ये कुंड जो है मेरे सबसे प्रिय है, कई बार भाग जाते हैं राधाकुंड में स्नान करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि राधाकुंड में जो जल है और राधा रानी में कोई अंतर नहीं, जब स्नान करो तो एक दूसरे आप कुंड को पैर से मान रहे हो, इसे हमें आदर देना चाहिए उनके और पानी लगे पैरों से, पैरों को कुंड के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार ये है संक्षेप में राधाकुंड का इतिहास, और हमारे कई गोस्वामी भजन कर देते। तो एक समय रूप गोस्वामी की इच्छा थी, रूप गोस्वामी ब्रज में भजन करते थे। तो रूप गोस्वामी की इच्छा थी कि अपने भाई सनातन गोस्वामी ने बहुत अच्छी खीर बनाई, पर उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। हालांकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास एक समय इतना ऊंचा पद था समाज में कि जब उन्होंने सरकारी नौकरी से आगे पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ, पर उन्होंने सारा धन बांट दिया। तो रूप गोस्वामी जब वृंदावन में गए तो रहते थे मधुकरी करके, उनकी एक दिन वो मधुकरी में नहीं गए, उनके मन में इच्छा थी कि अपने भाई सनातन मिले बड़ी अच्छी खीर बनाए। सोच रहे थे पर सुविधा नहीं थी, घर में कुछ भी नहीं था, पेड़ के नीचे दौड़ रहते थे। तो राधा रानी ने एक खूबसूरत लड़की गांव वाली लड़की का रूप ग्रहण कर लिया। राधा रानी ग्रहण करके दूध चीनी सब रूप पर तो कहा हे संत महात्मा मुझे जानते हो कि मैं जानती हूँ कि आपके घर में कुछ भी नहीं है, बोलो तो मैं आपके लिए खीर बना देती हूँ। राधा रानी को वर प्राप्त हुआ था दरवाजा मुनि के द्वारा। एक समय जब राधा रानी छोटी थी दरवाजा मुनि उनके घर में गए थे, तो दरवाजा मुनि ने उन्हें कहा राधा रानी मैं तुम्हारे हाथ का खीर खाना चाहता हूँ। राधा रानी ने खीर बनाई खीर का इतना अच्छा टेस्ट था, इतना अच्छा। इंद्रानंद जी कहा इंद्रवासी जी कहा ये तो खीर स्वर्ग में बन गए। और राधा जी का दरबार से मुझे बोल दिया कि जो भी तुम बनाओगे भोजन, कभी भी प्रसाद बनाओगे, वो जो भोजन होगा प्रसाद होगा वो इतना मीठा होगा कि पृथ्वी में कोई नहीं बना सकता उसके मुकाबले का। और जो व्यक्ति ये प्रसाद खाएगा वो मृत्यु से बचेगा, उसकी बुद्धि बढ़ेगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा। ये वर किसने दिया? बड़ा सा भूमि में दिया था राधा रानी को। तो राधा रानी ने खीर बना ली और खीर बनाते ही तो प्रकट हो गई। फिर रूपक स्वामी लौटे मधु कई करके उनके भाई सनातन दिया है। फिर रूपक स्वामी ने सनातन गोस्वामी को खीर खिलाई। सनातन ने कहा ऐसे टेस्ट की खीर मैंने कभी खाई नहीं, किसने बनाया ये खीर? ऐसे लगता है ये खीर तो वैकुंठ धाम से बन के आई है, संभव नहीं है कि भौतिक जगत में किसी ने बनाया है। रूप गोस्वामी ने कहा आज मैं मधुकरी के लिए नहीं गया था, तो एक गाँव वाली लड़की आई सब सुविधाओं को लेकर। गाँव वाली लड़की ने कहा मैं स्वामी जी तुम्हारे खीर बनाना चाहती हूँ। खीर बनाते ही वो लड़की तो प्रकट हो गई। तो सनातन गोस्वामी का वो लड़की गाँव वाली नहीं है, वो लड़की कौन है? रानी है। और सनातन ने रूपक को डांटा, कहा कि तुम्हें जाकर मधुकरी करना चाहिए क्योंकि तुमने मधुकरी नहीं की, इसलिए राधा कर राधा रानी को खुद ये खुद आकर ये सुविधा आपको देनी होगी। तो राधा रानी ने खीर भी बनाई अपने घर रूपा अपने सनातन के। इस प्रकार राधा रानी की अनेक लीलाएं हैं। एक समय एक जकौल क्या बोलते हैं, एक जकौल का जिसको ब्रिज ब्रज के लड़के बड़ा तंग कर रहे थे, उन्होंने वो जकौल भगा दिया। तो जकौल छेक में जाकर छुप गया, फिर लड़कों ने जाकर वो छेक को आग लगा दिया। तो जकौल को आग से निकलना पड़ा, बड़ा आग से निकला तो गोपियों ने उसे देखा है आग से शरीर खराब हुआ। फिर वो राधा रानी के पास ले गए जकौल को। तो राधा रानी ने जैसे ही छुआ जकौल फिर से ठीक हो गया। एक समय गरीब ब्राह्मण था और उस गरीब ब्राह्मण की इच्छा थी कोई धन दे जिसके द्वारा उसकी बेटी का विवाह हो जाए। उसकी जो पत्नी थी क्या कठोर शक्ति थी, कहती जब जाओ भीख मांग के लाओ, जब तक भीख मांग के नहीं लाओ कि घर भी आना हो। ये ब्राह्मण अलग अलग स्थानों में जा रहा था भीख मांगने के लिए और फिर वो भगवान के पास आया, मेरी एक बेटी है जिसका विवाह करना है, मैं क्षमता दे रहा हूँ। तो भगवान ने उसको गहने दिए कितना राधा रानी जी के वजन के बराबर के, राधा रानी का जो वजन था उसके बिल्कुल बराबर के वो गहने दिए। तो अनेक लीलाएं हैं राधा रानी की, जैसे वो कहा गया था उनके तो माता प्रभु भी थोड़ा आगे बोले गए। तो राधा रानी जी कौन है? भगवान की सबसे प्रिय भक्त है, उनकी अलादिनी शक्ति है। और अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें राधा रानी जी की कृपा मांगनी चाहिए। और हम राधा रानी जी की कृपा मांग सकते हैं किस माध्यम से? हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि राधा रानी जी के अनेक गुण हैं, हजारों हजारों गुण, और हजारों गुणों में 25 गुण बड़े प्रसिद्ध हैं। वो मैसेज को नाम सुनना चाहते हो राधा रानी देखने में बहुत मधुर और सबसे अधिक आकर्षक है ये है 25 गुण राधा रानी के सुनिए ध्यान से
श्री राधा के असंख्य गुणों में से उनके 25 गुण मुख्य हैं पहला है राधा रानी देखने में बहुत मधुर और सबसे अधिक आकर्षक है दूसरा राधा रानी किशोरावस्था में किशोरी है और सदैव नवज्योति है तीसरा राधा रानी की आंखें हिरणी जैसी और चंचल है चौथा राधा रानी का मुख कमल चेहरा अथवा सकल स्मित हास्य से युक्त है या मुस्कान युक्त है और सदैव परमानंद से युक्त है पांचवा श्री राधा के कर कमलों की तथा चरण कमलों की शुभ और सुंदर रेखाएं उन्हें विभूषित करती हैं या सुंदर बनाती हैं छठवां राधा रानी अपने सुगंधित शारीरिक सौरभ से कृष्ण को पागल जैसा बना देती हैं सातवां राधा रानी अति विशेष गायिका तथा वीणा वादिका है आठवां राधा रानी की बाणी आकर्षक तथा सुहावनी है राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करने वाले चुटकुले सुनाने में निपुण है राधिका असाधारण रूप से नम्र है या राधा रानी कृपा करुणा का मूर्तिमान रूप है राधा रानी बुद्धि और ज्ञान में सबसे बढ़ चढ़कर है राधा रानी प्रेम की सभी क्रियाएं करने में निपुण है राधा के चरित्र का चमकता हुआ रत्न लज्जा है राधा रानी विनयशीलता का प्रकाश स्तंभ है और वे सत्यता के मार्ग से कभी भटकती नहीं है